श्रीमद् भागवतम स्कंद 3 अध्याय 7 श्लोक संख्या 10। जीव अपनी आत्म पहचान के विषय में संकट में रहता है, उसके पास वास्तविक पृष्ठभूमि नहीं होती। ठीक उसी तरह जैसे स्वप्न देखने वाला व्यक्ति यह देखे कि उसका सिर काट लिया गया है। तो यहां पर मैत्रेय मुनि बद्ध जीव जो माया के पाश में बंधा है उसकी क्या स्थिति होती है उसका वर्णन कर रहे हैं। तो माया शक्ति का प्रभाव क्या होता है इसका विवरण यहां चल रहा है। तो अन्यत्र कहा गया है भागवतम में माया का कार्य कैसे होता है, क्या उसके फल होता है। यया सम्मोहितो जीवो, जिससे मोहित होकर के आत्मानं त्रिगुणात्मकम्, अपने को तीन गुणों से निर्मित आत्मा शोषण लगता है। या सम्मोहितो जीवो, जिससे मोहित होकर के आत्मानं त्रिगुणात्मकम्, वो है तीनों गुणों से अलग लेकिन माया के प्रभाव से शोषण लगता है, मैं तीनों गुणों से निर्मित हूं। परोपि मनुते अनर्थम्, वो हालांकि है परा प्रकृति का, अंतरंग तटस्थ शक्ति का है, यानी सुपीरियर नेचर का है, परा प्रकृति का है, वो चेतन है, वो ये जड़ पदार्थ का नहीं है निर्मित, जड़ पदार्थ से कुछ भी लेने देना नहीं है। परोपी, पर उसके बावजूद भी मनुते अनर्थम, वो अपने को मानता है जो निम्न, जिसका कोई वैल्यू नहीं है, यानी जड़, अपने को ऐसा मान लगता है कि मैं जड़ शरीर हूं, ये जड़ संसार का मैं अंग हूं, ऐसा मानने लगता है। तत्कृतम चाभिपद्यते, और इस प्रकार से ये जड़ प्रकृति के जो कार्य हैं इसमें लिप्त हो जाता है। तत्कृतम चाभिपद्यते, उसके कार्य में बंध जाता है। तो इस प्रकार से माया के कार्य का विश्लेषण हुआ है। तो माया मतलब मा अयम, जो नहीं है, ऐसा जो प्रतीत कराती है। यहां पर भी ये शब्द प्रयोग में आया है, प्रतीयत, प्रतीत होता है, ऐसा होता नहीं है लेकिन अंडर इल्यूजन, भ्रमवश ऐसा लगता है। क्या लगता है आत्मा को, कि मैं शरीर हूं, यह लगता है। तो ये माया शक्ति के प्रभाव से होता है। उसी प्रकार से भागवतम में माया शक्ति की परिभाषा और भी दी गई है, रितिर्थम यत प्रतीयेत न प्रतीयेत च आत्मनि तद विद्याम आत्मनो माया यथा भासो तथा तमः। अर्थात माया का अर्थ है किसी भी चीज को भगवान से सेपरेट देखना। वो कोई भी चीज भगवान से सेपरेट हो ही नहीं सकती, क्योंकि हर चीज जो भी एग्जिस्टेंस में है वो कैसे उसके जो आदि हैं, उसके जो उद्गम स्रोत हैं, उससे अलग कैसे हो सकती है। जो भी चीज एग्जिस्ट करती है वो भगवान है, भगवान की शक्तियां, भगवान की शक्तियां, ये सब मिलाकर के ही सब कुछ है। तो इससे अलग कुछ और क्या हो सकता है। तो इट हैज नो मीनिंग टू से दैट समथिंग हैज सेपरेट एग्जिस्टेंस बियॉन्ड गॉड, इसका कोई अर्थ नहीं है, ये शब्द का कोई अर्थ ही नहीं निकलता है। तो ऐसा मानना रितिर्थम यत प्रति, जो ऐसा प्रतीत होता है कि ये कुछ चीज भगवान से अलग है, मैं भगवान की भक्ति करता हूं और मेरा अपना जीवन भी अलग है। भगवान की भक्ति, ऐसे कल हम डिस्कस कर रहे थे, बैलेंस क्या है भौतिक में और भक्ति में। तो कोई बोल रहे थे 10% भौतिक, 10% भक्ति, 90% भौतिक। तो ये अलग देखना कि भगवान का भक्ति कार्य वो कुछ परसेंटेज होना चाहिए, मेरा अपना कुछ परसेंटेज होना चाहिए, यानी अपने को हम कुछ सेपरेट मान रहे हैं, मेरा अपना अलग एग्जिस्टेंस है, मेरा अपना कोई अलग जीवन है, तो यही माया है। रितेथम यत प्रतीयत, भगवान से अपने कुछ भी भगवान से अलग सोचना, वो माया है, वो इल्यूजन है। तो रितिर्थम यत प्रतीयेत न प्रतीयेत च आत्मनि तद विद्याम आत्मनो माया, उसको माया शक्ति कहते हैं, यथा भासो तथा तमः। जैसे अंधकार में सब परछाइयां दिखती हैं, कोई भी चीज स्पष्ट दिखती नहीं है, उसका मूल क्या है वो स्रोत दिखता नहीं है, ऐसे सब अंधकार में सब परछाइयां दिखती हैं, ठीक से कोई भी चीज नहीं दिख पाती है। उसी प्रकार से अज्ञानता में जो वास्तविकता है उसका जो भ्रम होता है उसे माया कहते हैं। तो मायावादी सिद्धांत है ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्यम, वो जगत को मिथ्या मानते हैं, लेकिन मिथ्या है जीव का इस जगत को वास्तविक, इस जगत को अपने अपने को इस जगत से संबंधित मानना, यानी कि मैं भौतिक जगत का अंश हूं ये मानना, ये मिथ्या सोच, ये है माया शक्ति का प्रभाव। तो जैसे आगे बताएंगे कि जीव का ये मानना जो नहीं है, इल्यूजन है, ये कैसे संभव हुआ? ये तभी संभव हुआ जब कोई एक्सटर्नल एनर्जी, कोई बाह्य शक्ति उसके ऊपर प्रभाव डाली, तभी संभव हुआ, नहीं तो कैसे संभव हो सकता है? जैसे कोई जादूगर हमको हमारे ऊपर हिप्नोटाइज कर दे, हमको अभी हम भूल जाए हम कौन है, ऐसे जादू शक्ति। तो ऐसे ही ये माया शक्ति एक जादुई शक्ति है जिसके द्वारा जीव अपनी पहचान को भूल जाता है।
उसको पावर ज्यादा है,
माया शक्ति का पावर जीव से ज्यादा है, क्योंकि
आध्यात्मिक पावर से भी ज्यादा है, लग रहा है, खींच रहा है जो।
आध्यात्मिक शक्ति, अंतरंग शक्ति ज्यादा नहीं है, लेकिन जो जीव है वो है सुपीरियर नेचर का, लेकिन वो है छोटा। जैसे अग्नि है तो बड़ी अग्नि है, तो मिट्टी जो है वो उसको बुझा नहीं सकेगी, लेकिन छोटा सा जो अग्नि का स्फुरलिंग है, चिंगारी, वो अगर अग्नि से अलग हो जाए तो उसको बंद कर देगी। तो इसलिए हम तटस्थ शक्ति में हैं, हालांकि हम बाय क्वालिटी गुण से हम सुपीरियर नेचर के हैं, अंतरंग शक्ति के हैं, लेकिन क्वांटिटी में बहुत छोटे हैं, बहुत अणु हैं, इसलिए हमारे अंदर जो ये तृतीय शक्ति है माया शक्ति, इसके अंदर आने की टेंडेंसी है, संभावना है। यही डिफरेंस है अंतरंग शक्ति में और तटस्थ शक्ति में।
कभी कभी ऐसा प्रवचन में होता है जीव अपना इच्छा के ऊपर, अपना जो स्वतंत्र इच्छा है उसका कारण से वो भौतिक जगत में आ जाता है, ऐसे जो हो रहा वो माया शक्ति खींच लेता है, प्रभावित करता है।
हाँ, तो ये माया शक्ति है, ये कब जीव को बांधती है? जब जीव भगवान को भूलने की का प्रयास करता है। कृष्ण भूलिया जीव भोगवांच करे, निकटस्थ माया तारे झपटिया दे। पुलिस कब पकड़ती है नागरिक को? जब नागरिक जो है वो गुनहगार होता है। तो उसी प्रकार से हमारी ये टेंडेंसी जो होती है कि ठीक है भगवान को भूलकर भोग करना है, ये जो इच्छा जब आती है जीव के अंदर, तब माया उसको पकड़ती है। इसलिए अल्टीमेटली माया बिना मतलब नहीं पकड़ती है, अकारण नहीं पकड़ती है, बिना वजह से नहीं पकड़ रही है, उसके जिम्मेदार हम ही हैं। लेकिन ये जो पूरा भगवान को पूरा भूल जाना है और अपने को ये भौतिक पदार्थ मान लेना, अपने को स्वयं मान लेना, ये सब पूरी तरह से ये माया के प्रभाव से फैसिलिटेट होता है। लेकिन शुरुआत हम करते हैं, टेंडेंसी हमारी है भूल जाना, लेकिन भूल जाने में भी हम सक्षम नहीं हैं भगवान को। माया के बिना हम भगवान को भूलने की इच्छा कर सकते हैं, लेकिन भगवान को भूलेंगे कैसे? जब तक कोई माया शक्ति के प्रभाव में आकर के नहीं आए, तब तक हम ऐसे भगवान को भूल भी नहीं सकते हैं, क्योंकि वो स्वाभाविक स्थिति है हमारी। लेकिन हमारी जब इच्छा होती है, ऐसी टेंडेंसी होती है, नहीं भगवान की जरूरत नहीं है मेरे को, लेट मी चेंज इट, तो फिर माया शक्ति के द्वारा ये फैसिलिटेट होता है। अच्छा, भूलना चाहते हो, ठीक है भूल जाओ, जादू भूल जाओ। अभी भूल के क्या करो? भूल के आदमी सुअर ही बन जाता है, क्या क्या बनता है, क्या क्या भूल जाता है, पूरा विस्मृत हो जाता है। तो ये सब संभव होता है माया शक्ति के प्रभाव से। तो ये माया शक्ति बड़ी विस्मयकारी शक्ति है। तो इसका समझाने के लिए यहाँ उदाहरण क्या दिया है कि जैसे हम कभी कभी सपने में अपना सिर कटा हुआ देखते हैं, फिर बोलते हैं मैंने सपना देखा, मेरा सिर कट गया। तो देखा किसने? तो सिर कट गया हमने देखा, तो हम देखने वाले हैं अपना ही सिर कटा हुआ। इसका मतलब ये, इसका कोई सेंटेंस का कोई मतलब ही नहीं है, ये रियलिटी में संभव नहीं है ये चीज़ कि हमने अपना सिर कटा हुआ देखा। तो अगर सिर कट जाएगा तो देख कौन देखेगा? कोई नहीं देख सकता। लेकिन हम फिर भी सपने में देखते हैं, क्यों? क्योंकि वो सपने सपना है, उसमें हम अपने को सपने में कुछ और देखते हैं, तो वो इल्यूजरी है, तो वो वास्तविकता नहीं है। तो इसी प्रकार से अपने को पहचान, अपनी पहचान को भूल करके इस भौतिक जगत का अंश मान लेना, ये ऐसे ही भ्रम है, और ये केवल संभव है माया के द्वारा फैसिलिट होकर। इसलिए जीव हर क्षण में भगवान के ही आश्रय में है। जब वो भगवान को भूलता है तो तो भी भगवान के ऊपर निर्भर है, जब भगवान को स्मरण करता है तो भी भगवान पर निर्भर है, दोनों ही कंडीशन में वो भगवान पर ही निर्भर है। इंडिपेंडेंट तो हो ही नहीं सकता जीव, लेकिन वो तो माया शक्ति के प्रभाव में ऐसा आकर के उसे लगता है, प्रतीयत ऐसा लगता है कि भगवान स्वतंत्र हो गया। इसलिए हर स्थिति में जीव भगवान के आश्रय में रहता है, यहां तक कि जब वो मायावश में सोच रहा है कि भगवान से मुक्त हो गया, तब भी तो भगवान के ही कंट्रोल में है, तभी तो भगवान पर ही निर्भर है, तो भगवान की माया शक्ति के अंडर में है, लेकिन माया के प्रभाव से सोचता है कि मैं इंडिपेंडेंट हो गया हूं। तो इस प्रकार से जीव की मिजरी ये भुला भुलक्कड़पन चलता रहता है, यहां तक कि यहां जैसा प्रभुपाद कह रहे हैं कि माया का अंतिम पाश क्या है भुलाने का, ये जो इल्यूजरी एनर्जी है इसका लास्ट पॉइंट क्या है, लास्ट लास्ट इल्यूजन, सबसे ज्यादा अंतिम इल्यूजन, जिस इल्यूजन को अगर हम छोड़ दें तो भगवत धाम जाएंगे, उससे जस्ट पहले बाउंड्री पर कौन सा इल्यूजन है, वो ये इल्यूजन है कि मैं ही परमात्मा बन सकता हूँ, आत्मा सो परमात्मा सो हम, ऐसे बहुत सारे सूत्र हैं जिनको मिस इंटरप्रेट किया जाता है या नए घड़े जाते हैं, तो उसके द्वारा जीव ये सोचता है कि मैं परमात्मा हूँ, लेकिन अभी मैं अज्ञानतावश भूल गया हूँ कि मैं परमात्मा हूँ, अभी इस स्टेटमेंट का कोई मतलब नहीं निकलता है कि मैं परमात्मा हूँ लेकिन मैं अज्ञानता से भूल गया हूँ कि मैं परमात्मा हूँ। ये ऐसे ही है जैसे कि आदमी कहे मैंने अपना सिर कटा हुआ देखा, इस स्टेट में जैसे कोई मतलब नहीं है, इस स्टेट का कोई मतलब नहीं है, मैं परमात्मा हूँ लेकिन मैं अज्ञानता में भूल गया हूँ कि परमात्मा हूँ, क्योंकि यदि मैं परमात्मा हूँ तो मैं कैसे भूल सकता हूँ, यदि मैं परमात्मा हूँ तो मैं कैसे अज्ञानता में आ सकता हूँ, तो फिर परमात्मा का मतलब क्या हुआ यदि हम परमात्मा होने पर भी अज्ञानता में आ सकते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट्स हैं, ये स्टेटमेंट्स कैसे हैं, एक पागल आदमी के स्टेटमेंट जैसे हैं। तो जैसे हम देखते हैं कई बार पागल आदमी होता है जिसका दिमाग खराब हो जाता है तो कैसे बात करता है, वो उसको कोई अर्थ नहीं निकलता है, मैं बिल क्लिंटन हूँ सब सबसे ठीक है तो वो जानते हैं सब ये पागल है, इसकी बातों कोई वैल्यू नहीं है, दिमाग खराब हो गया इसका। तो उसी प्रकार से क्या है माया मुग्ध, कहाँ गए प्रभु जी माया मुग्धर जीव सही हो सही भाव उदय पिशाच छिन्न पायल छिन्न मते मते छिन्न हो माया मुग्धर जीव हो यही भाव उदय है, माया मुग्धर जीव नहीं सोता कृष्ण ज्ञान, वो दूसरा श्लोक, अतएव कृष्ण कैल वेद पुराण वो दूसरा श्लोक, ये दूसरा श्लोक। तो जो मायाग्रस्त जीव है वो ऐसे ही जैसे पिशाचिन पायल जन मति छिन्न हो, जैसे जिसके ऊपर पिशाचिनी जिसके ऊपर भूत चढ़ जाता है तो उसकी मति वो छिन्न हो जाती है, उसकी उसकी मति काम नहीं करती है, फिर वो पागल। एक्चुअली शास्त्र के अनुसार जो व्यक्ति पागल हो जाता है उसका कारण है कि वो जो है वो जो प्रेत आत्मा है वो उसके अंदर प्रवेश करती है। तो जब हम पढ़ते थे मेडिसिन में तब ये पढ़ते थे कि ये लोग जो है सोचते हैं कि कोई प्रेत आत्मा घुस जाती है, कितना पागलपन है ये ऐसा सोचना हम लोग ऐसे पढ़ते थे हम लोग, कि एक्चुअली क्या होता है उनके अनुसार कि जो आदमी पागल हो जाता है तो उसको बोलते हैं स्प्लिट पर्सनैलिटी उसकी पर्सनैलिटी स्प्लिट हो जाती है, तो ये ब्रेन का कुछ डिसफंक्शन हो जाता है जिसकी वजह से वो आदमी सोचता है उसकी जो पर्सनैलिटी है दो में बढ़ जाती है, तो वो सोचता है एक मैं हूँ और कभी कभी फिर एक दूसरा आदमी की तरह बोलता है, तो इसको स्प्लिट पर्सनैलिटी उसके भी व्यक्तित्व दो में बढ़ गया है। तो लेकिन शास्त्र कहते हैं कि दूसरा पर्सनैलिटी क्या है, वो दूसरा पर्सनैलिटी है कि एक दूसरा व्यक्ति आकर के प्रविष्ट होता है। एक्चुअली हम देखते हैं कि मैंने अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में देखा है, एक कोई हमारे रिलेटिव थे तो बहुत वृद्ध हो गए, तो हमेशा पूरा जीवन उन्होंने बहुत धार्मिक कार्य किए, लेकिन अचानक बीमार हो गए, लास्ट में बहुत वृद्ध हो गए, बहुत कमज़ोर हो गए, फिर अचानक कुछ दिन में उनका पूरा पर्सनैलिटी पूरा चेंज हो गया, तो बिल्कुल बीमार थे, उठ भी नहीं सकते थे, लेकिन अचानक इतनी शक्ति आ गई कि ऐसे उछलने लगे कूदने लगे, और जिन्होंने आज तक कभी स्त्री के शरीर में थे, तो वैदिक संस्कृति में स्त्रियां तो गाली देना तो स्त्रियों के लिए बहुत दूर की बात है, और वो भी जो धार्मिक हो वो कैसे देंगे, लेकिन वो पूरा पर्सनैलिटी चेंज हो गया, ऐसे गाली देना शुरू कर दिए पूरा दिन रात, और इतना शक्ति कि दिन रात बोलते रहते थे क्या क्या, और सब कोई अर्थ नहीं निकलता था क्या बोलते हैं। स्पष्ट था कि कोई वो पर्सनैलिटी नहीं है, इट्स समबडी एल्स हु इज देयर इनसाइड। तो कई बार ऐसा भी होता है कि आदमी ऐसी ऐसी चीजें भी बोलता है जो जानता भी नहीं है, जब भी उसको उसके जीवन में उसके जानने का कोई संभावना भी नहीं है, दूसरी लैंग्वेज बोलता है फ्रेंच लैंग्वेज, कोई दूसरी लैंग्वेज बोलता है, उसको ऐसा सीखा नहीं उसने लैंग्वेज, दूसरी लैंग्वेज बोलता है, कोई दूसरी लैंग्वेज बोलता है जिसको उसको पता भी नहीं है उसको। तो इस तरह से वैदिक संस्कृति के अंतर्गत ये जो पागलपन है एक्चुअली ये इविल स्पिरिट्स के प्रभाव की वजह से होता है। जो लोग कमजोर, जो लोग अशुद्ध होते हैं, स्वच्छ नहीं रहते हैं, कमजोर होते हैं, उनके अंदर ये जो प्रेत आत्माएं हैं ये प्रविष्ट होती हैं, क्योंकि प्रेत आत्माएं जो होती हैं ये, यानी जो एविल स्पिरिट्स हैं, वो उनका शरीर नहीं है और बहुत सारी इच्छाएं उनके मन में रहती हैं, तो उनको पूरा करने के लिए उनको एक शरीर चाहिए, तो वैसे किसी और के शरीर में प्रविष्ट होकर के उसके माध्यम से अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने का प्रयास करती हैं। तो ऐसा जो व्यक्ति है तो वो पागल जैसा बोलता है, क्योंकि उसका ये जो रियल वर्ल्ड में जो रहता था उससे बिल्कुल अलग उसका व्यक्तित्व हो जाता है, इसलिए उसको पागल बोलते हैं। तो उसी प्रकार से जो व्यक्ति माया के द्वारा ग्रस्त है वो ऐसे ही पागल जैसा बात करता है, पागल जैसा बिहेव करता है। तो बोलता है कि मैं शरीर हूँ, ये मेरा है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरा बैंक बैलेंस है, इससे उसका कोई मतलब नहीं है। वो जो अपने को जो हम सोचते हैं ये मेरे पत्नी है, ये मेरे बच्चे हैं, क्या वास्तव में सत्य है? ये जो पति पत्नी बच्चे ये सब क्या है? परिवारजन, जैसे शास्त्र बताते हैं कि पानी बह रहा है, नदी बह रही है, और उसमें लकड़ी के दो टुकड़े बह रहे हैं, लकड़ी के टुकड़े बह रहे हैं, तो लकड़ी के टुकड़े कभी पास में आते हैं और कभी प्रवाह के द्वारा दूर चले जाते हैं, फिर कोई दूसरे लकड़ी के साथ मिल जाते हैं, फिर अलग हो जाते हैं, ऐसे अलग 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 होते रहते हैं। तो उसी प्रकार से इस प्रवाह में किसी शरीर में हम किसी को अपना पिता माता स्वीकार करते हैं, किसी दूसरे शरीर में फिर दूसरे किसी को अपना माता पिता स्वीकार करते हैं। तो इस प्रकार से ये माता पिता स्वीकार करना तो वास्तविकता नहीं है, वो तो वास्तविक माता पिता नहीं है, तो ये भ्रम है। लेकिन ये इतना स्ट्रांग है कि इससे निकलना आसान नहीं है, ये सब भ्रम से कि हम शरीर हैं, वेरी डीपली इनग्रेन्ड, ये बहुत गहराई में हमारे अस्तित्व में चला गया है। तो जैसे सपने में जब हम होते हैं तो बड़ा गहरा सपना चल रहा होता है, तो बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही प्रतीत होता है जैसे कि हम सपने में जो देख रहे हैं वही सच्चाई है, जब तक हम उठे नहीं। तो उसी प्रकार से ये जो भौतिक जगत में वर्तमान में हम देख रहे हैं ये ऐसे ही भ्रम है, और यही हमारे सभी कष्टों का कारण है, यही हमारे सभी कष्टों का कारण है। क्योंकि अपनी स्वाभाविक स्थिति में तो आत्मा के लिए कोई कष्ट है ही नहीं, आनंदमय अभ्यासात उसकी स्थिति है, लेकिन वो भूल करके न जाने कितने कितने प्रकार के कष्ट अनुभव करता है, कभी कभी सुखी रहता है, कभी कभी दुखी रहता है, लेकिन वास्तव में जो भौतिक सुख हैं तो वो भी तो वास्तविक सुख नहीं है, वो भी तो केवल दुखी हैं, वो भी केवल एक भ्रम का एक और प्रकार है, और कुछ नहीं है। अंततः तो भगवान को भूलकर जीव हमेशा दुखी रहता है। तो ये जो भौतिक कष्ट हैं ये भगवान की कृपा है जिसके माध्यम से भगवान जीव को याद दिलाते हैं कि तुम अपनी स्वाभाविक स्थिति में नहीं हो। वास्तव में जीव का कष्ट है भगवान को भूलना, लेकिन ये कष्ट उसको कष्ट प्रतीत नहीं होता है, इसलिए भगवान कृपावश ये भौतिक दुख उसको देते हैं जिससे उसकी बुद्धि ठिकाने आए, समझे, ओ जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ओ रियल बहुत कष्ट है। एक्चुअली जन्म मृत्यु जरा व्याधि कष्ट नहीं है आत्मा के लिए, क्योंकि वो तो वास्तव में उसके है ही नहीं, जन्म उसका होता नहीं, मृत्यु उसकी होती नहीं, बीमारी उसको होती नहीं, बुढ़ापा उसको होता नहीं आत्मा को, तो फिर ये तो उसके वास्तविक कष्ट नहीं है। लेकिन क्योंकि वो अपने को भी शरीर मान लिया है इसलिए इन कष्टों के माध्यम से उसको याद दिलाया जाता है, देखा शरीर में कितने कष्ट हैं, हाँ बहुत कष्ट, इसलिए तुम शरीर हो ये अच्छी बात नहीं है सोचना, हाँ सही बात, तुम आत्मा हो, हाँ ठीक है। तो इस प्रकार से उसको याद दिलाता है, लेकिन अंततः जब वो प्रगति करता है तो उसको लगता है जन्म मृत्यु जरा व्याधि तो कोई कष्ट नहीं है, सबसे बड़ा कष्ट तो है कि मैं भगवान को भूल गया हूँ, मैं भगवान की सेवा में नहीं हूँ, यही सबसे बड़ा कष्ट, इससे बड़ा कोई कष्ट नहीं। तो ये बाकी जो कष्ट है वो सेकेंडरी, वो उसके सिम्टम है, वो रूट डिजीज के लक्षण है वो मात्र। तो इस प्रकार से जीव की ये विडंबना है ये माया सृष्टि के अंतर्गत, और इससे निकालने के लिए भगवान उसे बुला रहे हैं कि ये माया ये स्वप्न से जागो, जीव जागो जीव जागो, गौराचांद बोले। तो भक्ति ठाकुर लिख रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु आवाज दे रहे हैं, अरे जीव अभी जागो, कुटा निद्रा गेरा माया पिशाची, बहुत बहुत समय से तुम ये माया रूपी अगेन पिशाची उसकी गोद में बहुत दिन से हम सोए हुए हैं, बहुत दिन सोए हुए हैं, और उसकी गोद में सो करके स्वप्न देख रहे हैं, कभी अच्छा स्वप्न कभी बुरा स्वप्न, लेकिन वो सब स्वप्न है, वो हमारी स्वाभाविक स्थिति नहीं है। और किसकी गोद में बैठे हैं, पिशाचिनी गोद में बैठे हैं, माया रूपी, जिसका काम क्या है, केवल हमको यातना देना, रहु चूसना क्षण क्षण। तो ऐसी पिशाचिनी की गोद में बैठ करके हम कैसे सुखी जीवन की कल्पना कर सकते हैं, तो वो तो भ्रम है, वो संभव नहीं है। तो इसीलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि मैं आपके लिए औषधि लेके आया हूं जिससे ये जो भ्रम है ये टूट जाएगा। भौजी वो बोलिया ऐश संसार भीतरे भूलिया रोहिले तुम्हें अविद्यार भरे, कि जब गर्भ में थे तब तो तुमने बोला था भौजी वो भजन करूंगा आपका, कान पकड़े थे कि भगवान अभी बहुत यातना हो रही, क्योंकि जीव जब अंदर माँ के गर्भ में होता है तो बहुत कष्ट में होता है। वो एक तो बहुत छोटी सी कैविटी के अंदर सुकड़ के रहना पड़ता है, अंधकार होता है और बहुत सारे कीटाणु होते हैं जो उसे काटते रहते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता है क्योंकि बहुत कॉम्पैक्ट स्थिति में बंधा होता है, कुछ नहीं कर सकता, इसलिए बहुत कष्ट में होता है। और ऐसी स्थिति में अगर पुण्यशाली है तो वो प्रार्थना कर पाता है भगवान से, उसको स्मरण आ पाता है कि मैं एक्चुअली भगवान का दास हूँ, मैं क्यों भूल गया, तो इसलिए वो प्रार्थना करता है भौजी वो ऐसा बोल करके तुम संसार में आए कि मैं आपका भजन करूंगा, अभी ये जन्म में केवल आपका भजन ही करूंगा और कुछ नहीं करूंगा, भूलिया रोहिले तुम्हें अविद्यार्भा, लेकिन फिर जन्म होते ही फिर से भूल करके भूल जाते हो उसको और फिर दोबारा से संसार में रचपस जाते हो। तुम्हारा लोहिते आमी होइनो अवतार, आमी बिना बंधु आर के आचे तुम्हार, तो तुम्हारे लिए ही मैं आया हूँ, मेरे अलावा तुम्हारा और कौन बंधु है, तुम अपना बंधु मान रहे हो, ये मेरे घर वाले मेरे बंधु हैं, ये मेरे मित्रजन मेरे बंधु हैं, लेकिन ये सब तुम्हारे बंधु नहीं है, ये तो असत सैन्य है, ये सब तो नकली सैनिक हैं, बल्कि शास्त्र में तो क्या कहा गया है, ये सब परिवारजन लुटेरे और डकैत हैं, आपका धन संपत्ति सब कुछ छीन लेते हैं, ये सब लुटेरे हैं। तो जो भी कृष्ण भक्त के अलावा जो कोई भी संसार में है वो कोई हमारे अपने नहीं है, वो सब केवल उनका एक ही काम है हमारे को लूटना, वो सब माया के एजेंट हैं। जो भी कृष्ण भक्त नहीं है वो चाहे हमारे संबंधी हो मित्र हो कोई भी हो, यदि कृष्ण भक्त नहीं है तो वो केवल माया के एजेंट हैं। इसलिए सब प्रकार से प्रयास करते हैं, भक्ति मत करो, सब प्रकार से हमको अड़चन डालते हैं, भक्ति मत करो भक्ति मत करो, वो हमारा हित नहीं चाहते हैं, वो सब लुटेरे हैं जो हमारे जिनकी नज़र हमारी धन संपत्ति हमारी शक्ति सब पर है कि कैसे मेरी सेवा करो, तुम मेरी सेवा करो, भगवान की सेवा क्यों करते हो, मेरी सेवा करो, मैंने तुम्हें जन्म दिया है तुम क्यों भगवान की सेवा करते हो, तुम मैंने जन्म दिया है मेरी सेवा करो, माँ बाप ऐसा बोलते हैं बच्चे को, हमने तुम्हें क्यों जन्म दिया फिर अगर हमारी सेवा नहीं करोगे तो आपके माँ बाप की सेवा होनी चाहिए, लेकिन यदि कोई परम माँ बाप की सेवा में अपना जीवन निछावर करता है तो फिर उससे आकांक्षा नहीं करनी चाहिए कि वो अन्य किसी की सेवा करे, जब हाईएस्ट की सेवा कर रहा है तो अन्य की सेवा की उसको जरूरत नहीं है, और जहां तक हमारी अपनी, हमारा क्या होगा फिर? तो चाहे बच्चा हो तब भी आपका वही होना था, जो बच्चा नहीं हो तब भी वही होना था, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सब अपने अपने कर्म भाग्य के अनुसार भुगतने वाले हैं, कोई किसी को कुछ बचाने वाला नहीं है, कोई किसी को कुछ रखने वाला नहीं। ये केवल माया के भ्रम की वजह से हम सोचते हैं मैं बचाऊंगा, मैं, वो मुझे बचाएगा, बचाने वाला केवल वही है। इसलिए पुत्र होने पर या पुत्र ना होने पर, पैसा होने पर या पैसा नहीं होने पर, जो भी है अल्टीमेटली भाग्य के अनुसार, कर्म के अनुसार जो होना होता है। ये जो कर्तव्य हैं कि हमें ये करना चाहिए, वो हमारी शुद्धि के लिए है, वो उस व्यक्ति के लाभ के लिए नहीं है। उस व्यक्ति का तो जो उसको जितना भौतिक सुख दुख है उसका लिखा हुआ ही है, लेकिन जब तक हम देहात्म बुद्धि में हैं तो एक प्रकार के कर्तव्य में हम बंधे होते हैं, क्योंकि हम उसको, उससे एंजॉय करना चाहते हैं, इसलिए कर्तव्य भी साथ में आता है। ठीक है, एंजॉय करना चाहते हो तो ये कार्य भी करो, कार चलाना चाहते हो तो पेट्रोल भी डालो। तो आप खाली बैठ के देखिए, तो खाली बैठ सकते हैं कि नहीं? खाली बैठ के, खाली बैठना क्या आसान है? खाली नहीं बैठ सकता, कैसे बैठेगा?
नहीं, वो जो
उसके
खाली बैठे रहना, उसको भी खाना मिल रहा है, बाहर हम लोग कैसे बैठ जाएंगे, कुछ तो खाना तो देंगे।
लेकिन आपको हाथ तो चलाना पड़ेगा ना, मुंह में खान तो डालना पड़ेगा। नहीं, सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मृगे मुखा, सोए हुए सिंह के मुख में अपने आप, हिरण अपने आप नहीं घुस जाता है। तो आपको हाथ तो उठाना पड़ेगा, खाना कुछ तो खाना पड़ेगा, वो पैसा दक्षिणा दे के जाएगा, उसको जाकर के मार्केट में जाके राइस तो लेके आना पड़ेगा, राइस को पकाना तो पड़ेगा, मुंह में डालना तो पड़ेगा, ये सब तो कार्य करना पड़ेगा। तो ये कार्य करना पड़ेगा, लेकिन सैंक्शन ऑलरेडी है। अगर सैंक्शन ऊपर से नहीं हो तो आप कितना भी काम करो तो भी तो नहीं मिलने वाला। अगर ये ऊपर जीवी वाले कनेक्शन काट दें लाइट का ऊपर से ही, तो आप इलेक्ट्रिसिटी के वायर बिछा दो, फिनोलेक्स वायर लगा दो बेस्ट क्वालिटी, और सब अच्छे अच्छे प्लग्स लगा दो, तो लाइट आ जाएगा? नहीं आएगा। ऊपर सैंक्शन नहीं तो नहीं आएगा। तो सैंक्शन है लेकिन फिर भी आपको उसको कनेक्शन लेना पड़ता है, थोड़ा काम करना पड़ता है। तो उसी प्रकार से हमारे भाग्य के अनुसार भगवान एक प्रकार का भौतिक सुख, एक प्रकार का भौतिक दुख सैंक्शन किए हुए हैं, वो सैंक्शन किए हुए हैं। और वो सैंक्शन आप अपनी नेचर के अनुसार आप कार्य करोगे, उसके बिना नहीं रह सकते आप कार्य के बिना। तो वो कार्य करोगे तो वो जो आपके सैंक्शन है वो आपको मिलेगा। तो इसलिए एंडेवर करना है, लेकिन कितना एंडेवर? केवल जो सैंक्शन है उसको लेने के लिए एंडेवर, उससे ज्यादा नहीं मिलने वाला। आप कितना भी एंडेवर करो ज्यादा नहीं मिलने वाला, और बिना एंडेवर किए आप रह भी नहीं सकते, दैट इज नॉट पॉसिबल। नहीं कष्ट क्षणमपि जादु तिष्ठत्य कर्म कारते ही अवशा कर्मा सर्वे प्रकृति जय गुणान। एक क्षण के लिए भी कोई बिना काम के नहीं रह सकता है। हर व्यक्ति अपने प्रकृति गुण के अनुसार काम करने के लिए बाध्य है। तो ऐसा है, तो इसलिए जो जिम्मेदारियां हैं हमारी, जिम्मेदारियां किसी के प्रति, वास्तव में वो हमारी बनाई हुई हैं जिम्मेदारी। नहीं तो सबकी केवल एक ही जिम्मेदारी है, भगवान की सेवा, और कोई जिम्मेदारी नहीं है। कैदी का जो पत्थर तोड़ने का जिम्मेदारी है, वो कोई सरकार की नहीं चाहती कि, सरकार कोई नहीं चाहता कि वो पत्थर तोड़े, वो जरूरी नहीं है। वो इसलिए दिया गया है क्योंकि वो सेवा सरकार की आदेश का पालन नहीं कर रहा है। ठीक है, अभी उसको सुधारने के लिए जिम्मेदारी बनाई गई है, इट इज कंकॉक्टेड रेस्पॉन्सिबिलिटीज, इट डज नॉट एग्जिस्ट इन रियलिटी। क्योंकि अभी हम देखते हैं ये शरीर का यापन करना है, दिस इज कंकॉक्टेड रेस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि शरीर की जरूरत नहीं थी, जबरदस्ती हमने शरीर लिया। तो शरीर का यापन करने की जिम्मेदारी क्या वास्तविक जिम्मेदारी है? आत्मा के लिए कोई ये शरीर का यापन की जरूरत नहीं है, ये तो जबरदस्ती हमने अपने ऊपर जिम्मेदारी ले ली है क्योंकि हम भोग करना चाहते थे। वही सेम एग्जाम्पल, कार एंजॉय करना है कार में तो फिर पेट्रोल डालना पड़ेगा, लेकिन अगर कार जरूरत नहीं है आपको, कार से आ सकती नहीं, तो पेट्रोल की जरूरत नहीं है। तो उसी प्रकार से यदि शरीर से भोग करने की आसक्ति नहीं है तो शरीर का यापन करने की भी आसक्ति नहीं है, परिवारजनों की शरीर के आसक्ति वो भी जरूरी नहीं है। अगर कोई व्यक्ति ब्रह्मचारी रहता है, परिवार नहीं बनाता है, तो उसको परिवार के पालन पोषण की भी आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल क्लियर है। लेकिन जिसको आसक्ति है कि नहीं मुझे एक परिवार बनाना है, तो ठीक है बनाओ, और फिर उसको मेंटेन भी करो, मेंटेन करना ही पड़ेगा जब आसक्ति है। तो इसलिए जिम्मेदारियां हम बनाते हैं आसक्ति के वजह से। अल्टीमेटली तो सबकी एक ही जिम्मेदारी है भगवान की सेवा। एनेची औषधि माया नाशीवार लागी, हरिनाम महामंत्र लव तुम्हें लागी। अब मैं जो है तुम्हारे लिए ये माया के जो इल्यूजन है, जो ये क्रिएट हो गया है, इसको हटाने के लिए एक दवाई लेके आया हूँ, तुम्हारे लिए एक दवाई लेके आया हूँ। जैसे जब सांप काट लेता है तो उससे निकालने के लिए मंत्र होते हैं, जिन मंत्रों को कान में फूका जाए, यदि एक्सपर्ट कोई आदमी है तो उससे जो जहर का प्रभाव है वो खत्म हो जाता है। तो ऐसे ही ये जो माया का प्रभाव है, इससे हटाने के लिए चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि मैं आपके लिए एक औषधि लेके आया हूँ, हरि नाम महामंत्र। वो औषधि है हरि नाम महामंत्र, जिसको तुम जो तुम्हारे लिए मैं ले आया, लो तुम्हें मांगी, मांग करके उसको ले लो, मांगो उसको, मांगना पड़ेगा, यानी इच्छा होनी चाहिए, भगवान कृपया मुझे अभी अपनी शरण में लीजिए, ये मांगना पड़ेगा। भगवान देने को तैयार हैं, लेकिन आप मांगोगे नहीं तो आपको मांगना तो पड़ेगा, इतना काम तो आपको करना पड़ेगा, जबरदस्ती नहीं कर सकते, मांगना तो पड़ेगा, लेकिन मांगोगे तो तैयार है, भगवान देने के लिए तैयार है। चैतन्य महाप्रभु के अवतार के रूप, भक्ति विनोद प्रभु चरण पड़िया, सही हरि नाम मंत्र लाओ, लाई लो मांगिया। तो भक्ति में ठाकुर चैतन्य महाप्रभु के चरण में पढ़ करके पढ़े, उन्होंने मांगा और ये हरि नाम महामंत्र पाया। तो उसी प्रकार से हम भी यदि ये समझते हैं कि हम माया के भ्रम में गिरे हुए हैं और ये बहुत जटिल स्थिति हो गई है, बड़ी ऑकवर्ड सिचुएशन है, तो फिर हम उत्साही होंगे, उत्सुक होंगे इससे निकलने के लिए, और फिर हृदय